ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कोशी प्रदेश सभा में विशेष संबोधन। सरकार ने सुशासन और समृद्धि के मार्ग पर देश को आगे बढ़ाया है, प्रधानमंत्री का कथन। मोगलिंग मलेखू सड़क स्तरोन्नति का 25% कार्य हुआ पूरा। विदेश में रोजगार दिलाने के प्रलोभन में रकम ठगी करने के आरोप में 6 गिरफ्तार। और एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व की अधिकांश जनसंख्या प्रदूषित हवा में ले रही है सांस। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संघीयता, सुशासन, पारदर्शिता और कानून के शासन को मजबूत बनाने के लिए सरकार को जिम्मेदार और जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि संसद की भूमिका को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। अंतर व्यवस्थापिका मंच नेपाल के पोखरा घोषणा पत्र हस्तांतरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि संसद में जनता की समस्याओं पर चर्चा नहीं हो पाने की शिकायत आ रही है। उन्होंने कहा कि संसद को जनता की आवाज को मुखरित करने वाले स्थान के रूप में विकसित करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र को मजबूत बनाते हुए सरकार ने सुशासन और समृद्धि के मार्ग पर तेजी से काम करते हुए देश को आगे बढ़ाने का प्रयास शुरू कर दिया है। आज कोशी प्रदेश सभा में विशेष संबोधन देते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि जनता के बलिदान और संघर्ष की बदौलत प्राप्त संविधान की रक्षा करते हुए आवश्यकता अनुसार जनता और संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के पक्ष में संशोधन किया जाएगा। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि देश की समृद्धि और राष्ट्रीय एकता के लिए वे अभी भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ओली ने यह भी कहा कि कोशी प्रदेश आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कृषि और पर्यटन की दृष्टि से संभावनाओं से भरा प्रदेश है। उन्होंने प्रदेश सरकार से इन संभावनाओं का सही उपयोग करने का आग्रह भी किया। आज ही पूर्वांचल विश्वविद्यालय के 13वें दीक्षांत समारोह में दीक्षित छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने युवा छात्रों से देश निर्माण में योगदान देने और पलायन न होने का आग्रह किया। दीक्षांत समारोह में विभिन्न संकायों के 8,150 छात्रों ने दीक्षा प्रदान की प्राप्त की। मुगलिंग मलेखू सड़क स्तरोन्नति का काम अब तक 25% पूरा हुआ है, ये जानकारी परियोजना ने दी। नागढ़ंगा मुगलिंग की करीब 95 किलोमीटर लंबी सड़क की परियोजना को 3 पैकेज में अलग करके स्तरोन्नति के काम हो रहे हैं। पहले पैकेज में नागढ़ंगा नौवीं से, दूसरे में नौवीं से मलेखू और तीसरे में मलेखू मुगलिंग को रखा गया है। परियोजना प्रमुख केदार प्रसाद नेपाल ने बताया कि आषाढ़ मासांत तक 16 किलोमीटर सड़क में पीच का काम पूरा करने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि समय पर निर्माण सामग्री उपलब्ध न होने के कारण समस्या हुई है। बता दें कि कुल 4,80,59,00,000 रूपये के खर्च में शर्मा जेड आई सीजी के साथ विक्रम संबत 2079 पूस 15 गते परियोजना का समझौता हुआ था और 2082 पूस 15 गते तक में स्तरोन्नति का काम पूरा करना है। वैदेशिक रोजगारी में भेजने का प्रलोभन देकर रकम ठगने के आरोप में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में गोरखा आरूघाट गांवपालिका वार्ड नंबर 4 के स्थानीय निवासी, काठमांडू महानगरपालिका 16 में रह रही 24 वर्षीय सरू परियार, कंचनपुर बेलौरी नगरपालिका 3 के स्थानीय निवासी और काठमांडू की टोखा नगरपालिका 3 में रह रहे 32 वर्षीय जेम्स राणा लगाए 6 लोग शामिल है। पीड़ितों की शिकायत के आधार पर उन्हें काठमांडू की अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल की गाली संशोधन को पारित किया गया। वन तथा वातावरण मंत्री एन बहादुर शाही द्वारा बैठक में प्रस्तुत किए गए मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल की गाली संशोधन को अनुमोदित करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके अलावा बैठक में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग द्वारा प्रस्तुत आम संचार परिषद विधेयक 2081 को धारावाहिक चर्चा के लिए संबंधित समिति में भेजे जाने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। प्रतिनिधि सभा की बैठक में कानून, न्याय तथा संसदीय मामलों के मंत्री अजय कुमार चौरसिया ने उपभोक्ता अदालत के गठन से संबंधित सूचना टेबल की। बैठक में सांसदों ने आरोप लगाया कि मौजूदा संघीय लोकतांत्रिक गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठने के पीछे पिछली और वर्तमान सरकार की कमजोर कार्यशैली जिम्मेदार है। सांसदों ने बैठक में सड़क पर बढ़ती असंतुष्टि पर समय रहते ध्यान देने की मांग की। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने राजतंत्रवादियों से लोकतंत्र के भीतर ही अपनी जगह तलाशने का आग्रह किया है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में संबोधन देते हुए अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि गणतंत्र का विकल्प राजतंत्र नहीं हो सकता है और राजतंत्रवादियों को लोकतंत्र के भीतर ही अपनी जगह खोजनी चाहिए। प्रमुख विपक्षी दल के नेता के रूप में संसद के रोस्टम पर खड़े होकर अध्यक्ष प्रचंड ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की लगातार अनुपस्थिति पर आपत्ति जताई। उन्होंने संसद के संचालन में विपक्ष को दिए गए स्पेस को लेकर गंभीर होने का आग्रह सत्तारूढ़ दलों से किया। अध्यक्ष प्रचंड ने आरोप लगाया कि पिछले 8 महीनों में सत्तारूढ़ पार्टियों के शासन शैली के कारण देश के सभी क्षेत्रों में आंदोलन की स्थिति बनती जा रही है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने कहा है कि आम नागरिकों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने, निष्पक्ष व्यापक सरल और सुलभ तरीके से न्याय प्रदान करने तथा न्यायपालिका के प्रति जनता के विश्वास को बढ़ाने के लिए सर्वोच्च अदालत को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सर्वोच्च अदालत न्याय परिषद और न्याय सेवा आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण करते हुए राष्ट्रपति पौड़ेल ने कहा कि नेपाल के संविधान द्वारा स्थापित मूल्यों और सिद्धांतों के अधीन रहकर संवैधानिक और कानूनी दायित्वों को पूरा करने के संदर्भ में तैयार किए गए प्रतिवेदन में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे इस बात पर विश्वास रखते हैं कि इन मुद्दों को गंभीरता से संबोधित किया जाएगा। राष्ट्रपति ने न्यायिक निष्पक्षता और प्रभावी न्याय प्रदान करने के लिए आगामी दिनों में और अधिक मजबूत भूमिका निभाने का सुझाव दिया। गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण और व्यवस्थापन के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। आज कैलाली की धनगढ़ी में आयोजित कार्यक्रम में गृहमंत्री लेखक ने कहा कि काठमांडू में स्थित आपातकालीन गोदाम घर को केंद्रीय आपातकालीन गोदाम घर के रूप में विकसित करने की सरकारी योजना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश को हस्तांतरित किए गए आपातकालीन गोदाम घर की रेखदेख करने की जिम्मेदारी अब प्रदेश सरकार की है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा है कि समाज के परिवर्तन में योगदान देने वाले व्यक्तियों को राज्य द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए। राणा शासन के खिलाफ क्रांति के योद्धा नारद मुनि थुलुंग और चीनियालाल सिंह की तस्वीरों वाले हुलाक टिकट पर प्रथम दिवसीय आवरण का टांचा लगाने के कार्यक्रम में मंत्री गुरुंग ने कहा कि परिवर्तन का नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों के साथ साथ परिवर्तन को सफल बनाने में योगदान देने वालों को भी सम्मानित किया जाना चाहिए। नेपाल टेलीविजन पर गायन रियलिटी शो मेरो वॉयस यूनिवर्स और नृत्य रियलिटी शो मेरो डांस यूनिवर्स के दूसरे सीजन का प्रसारण शुरू होने जा रहा है। ये शो हर शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार को रात 8:50 पर प्रसारित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य दुनियाभर में रह रहे नेपालियों को कला और संस्कृति के माध्यम से एक सूत्र में बांधना है। दोनों रियलिटी शो में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विजेता को 1-1 करोड़ रूपये, दूसरे स्थान पर रहने वाले को 25-25 लाख रुपए और तीसरे स्थान प्राप्त करने वालों को 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रेस चौतारी नेपाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल प्रतिष्ठान शाखा का पहला अधिवेशन आज संपन्न हुआ, जिसमें सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल रेडियो नेपाल की बेंजू सुवेदी की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय नई कार्य समिति का चयन किया गया। इससे पहले उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रेस चौतारी नेपाल के अध्यक्ष गणेश बसनेत ने कहा कि तथ्यों पर आधारित और संतुलित सूचना तथा समाचार प्रसारण की जिम्मेदारी केवल सार्वजनिक सेवा प्रसारण ही पूरा कर सकता है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य पर्यावरणीय एजेंसियों की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के अधिकांश आबादी प्रदूषित हवा में सांस ले रही है। ये समस्या विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में गंभीर है, जहां वाहनों, उद्योगों और अन्य स्रोतों से निकलने वाले प्रदूषकों के कारण वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है। WHO के अनुसार दुनिया की लगभग 99% आबादी ऐसी हवा में सांस ले रही है जो उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा से अधिक प्रदूषित है। वायु प्रदूषण के कारण हर साल लाखों लोगों की मौत होती है, जिसमें हृदय रोग, स्ट्रोक, फेफड़े के कैंसर और श्वास संबंधी बीमारियां शामिल है। भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में से एक है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। सर्दियों के मौसम में पराली जलाने, वाहनों के धुएं और औद्योगिक प्रदूषण के कारण वायु गुणवत्ता और भी खराब होती जा रही है। वायु प्रदूषण के कारण श्वास संबंधी बीमारियां, हृदय रोग, फेफड़े के कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कोशी प्रदेश सभा में विशेष संबोधन। सरकार ने सुशासन और समृद्धि के मार्ग पर देश को आगे बढ़ाया है, प्रधानमंत्री का कथन। मुगलिंग मलेखू सड़क स्तर उन्नति का 25% कार्य हुआ पूरा। विदेश में रोजगार दिलाने के प्रलोभन में रकम ठगी करने के आरोप में 6 गिरफ्तार। और एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व की अधिकांश जनसंख्या प्रदूषित हवा में ले रही है सांस। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे पाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।